نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 201 آیت نمبر 20 سے 40 سورة روم. لسن نمبر 201 آیت نمبر 20-40 سورة روم. ایک اگلی سیڑھی پہ سوار ہوئے ہیں ہم 200 کی. آپ کو یقین آتا ہے کہ پیچھے 200 لیسن گزر چکے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی دین ہے نا کہ اس نے آپ کو اس تک رکھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سیڑھی تک بغیر کوئی سبق چھوڑے ہوئے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 20 سے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر تم اچانک بشر بن کر زمین میں پھیل رہے ہو. یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک نشانیوں کا تذکرہ ہے. آغاز میں بات ہوئی تھی کہ سورت روم نشانیوں والی سورت، یعنی سورت الآیات ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کتنی دفعہ لفظ آیت آیا ہے سورت میں. آپ پوری سورت کو جب بعد میں اکیلے میں خود کریں گے، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کچھ صورتوں کی کچھ خاص چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی. لفظ آیت جہاں بھی آتا ہے تو ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور لفظ آیت پہ غور کیے بغیر اگلے لفظ یعنی جو نشانی ہوتی ہے اس پہ غور کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا بات کروں گی لفظ آیت پہ. آیت کا لفظ قرآن پاک کی آیات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو کیا ہے؟ سائنس، انگلش میں جس کو سائنس بولتے ہیں، جس کے اندر نشانیوں کا معنی کس اینگل سے آتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنا ہوگا. آپ کسی بھی روڈ پہ جاتے ہیں، روڈ کے سائڈ پہ کیا دکھتی ہیں؟ سائنس ہوتے ہیں نا. یہاں آپ لوگ اس کو شیلڈ کہتے ہیں غالباً. شیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، ادھر جائیں گے تو اسلو ہے، ادھر جائیں گے تو موس ہے، ادھر جائیں گے تو درمن ہے. اور ساتھ ساتھ جو نشانیاں آتی رہتی ہیں تو اس سے جانے والے کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اب اس شلت یا اس سائن یا اس روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو کتبے لکھے ہوئے ملتے ہیں، اس کو لفظ آیت پہ لائیں تو پھر بتائیے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیاں. کس کی نشانیاں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے آگے جتنی بھی چیزیں آپ سنیں گے نا، ان کو غور کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو بیچ میں لے آئیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو صبح و شام ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، زندگی کا ایک نظام کا حصہ لگتی ہیں، لیکن ہم بہت ہی کم ان کے پیچھے اللہ کو پاتے ہیں. یہاں جیسے کہ ابھی شروع میں ہی انسان کی پیدائش کی، پھر شادی کی، شوہر بیوی کی بات ہوگی، تو ہم کبھی کم ہی سوچتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ کیسے ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نشانی کو پا کر میری طرف آؤ. سورۃ روم شروع ہوئی روم اور فارس کی ایک جنگ سے. کفار اور منافقین اور ان کی باتیں اور اس دنیا کی زندگی کو بیچ میں لانے کے بعد اب یہاں بات ہو رہی ہے نشانیوں کی. کیا پتہ چلا؟ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، اس ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ایک نشانی ہے. غور کرو، کرتا کیوں ہے، بناتا کیوں ہے؟ تم روز ادھر سے ادھر گزرتے ہو، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہو، لیکن تمہیں کیوں نہیں وہ رب ملتا جو سب کچھ کر رہا ہے؟ یہاں پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. پہلی بات تو بتا دی گئی کہ تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، تو راب سے پیدا ہوئے ہو، بندر سے نہیں ہوئے. مٹی میں کوئی عقل ہے؟ کوئی سمجھ، کوئی بوجھ، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو کیا کرتا ہے؟ ثم اذا انتم، پھر تم اس میں سے. یہ جو ثم کا لفظ ہے نا، یہ وقت کے لیے آتا ہے، تھوڑا سا ٹائم بیچ میں لگتا ہے، زمانے کا تھوڑا سا رخ کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے. پہلے مٹی میں وہ جاتی ہے چیز، اس سے خوراک بنتی ہے، وہ کھاتے ہو، پھر اس سے تمہارا نطفہ بنتا ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر جو انرجی لگتی ہے، ان سارے مرحلوں سے گزر کے ثم اذا انتم بشرون، پھر تم ایک بشر بن جاتے ہو. ایسے لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے بچے کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ادھر، کہ تم ایسے بن جاتے ہو، تمہارا یہ حال ہوتا ہے. ये जो इज़ा है ये फुजाइया है, यानी अचानक के मानों में आता है। वो सारे अतवार जो माँ के पेट में बच्चे के साथ होते हैं उनकी तरफ इशारा है कि तुमने कभी गौर किया, क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है कि मट्टी जिसको एक जगह रख दो तो 10 साल तक अपनी जगह से ना हिले, कैसे एक चलते फिरते बच्चे की शक्ल में ढल जाती है। सुम इज़ान तुम बशरुन तन तशिरुन, यूं बिखर जाते हो, यूं फैल जाते हो, नशर हो जाते हो। जब आदम और हवा दुनिया में भेजे गए दुनिया खाली थी। जब आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे ग्लोब को देखते होंगे तो आपको भी शायद वहशत होती होगी, क्योंकि वो खाली होता है, उसमें लोग नहीं हैं। बल्कि आप ये एक्टिविटी करें तो आपका दिल खुलेगा। ग्लोब को लेके बैठे, तस्वीर से देख लें, सामने लोगों के पास टेबल पर रखे हुए भी होते हैं। पूरे ग्लोब को इधर उधर माउस से हिलाएं और सोचें कि एक वक्त था कि इस पूरे ग्लोब में एक कपल छोड़ा गया, आदम और हवा, और आज क्या है, बशरुन तन तशिरुन। कैसे चींटियों की तरह इंसान फैले में, कहीं भी आपको ऐसी कोई ज़मीन खाली नहीं दिखेगी कि वहाँ कोई रहता ही ना हो। कोई कहीं इंसान है तो कहीं परिंदे, परिंदे हैं तो कहीं कुछ जानवर। ये सब किसके कहने से हो रहा है? क्या ये एक अल्लाह की वहदानियत और उसकी किबरियाई की दलील नहीं है? इतनी बड़ी बात के इंसान का दिल तो क्या उसका दिमाग कहने लगता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि वाकई अल्लाह एक है और मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता। कायनात की हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ जो फैली हुई है, उनकी स्पीशीज, उनकी नस्लें, जानवर, परिंदे, क्या कुछ अल्लाह ताला ने बताया। आज आप देखिए कि इंसान की पूरी कॉम्पोजिशन साइंस ने मालूम कर ली। हमारे अंदर कैल्शियम है, पोटाशियम है, हमारे अंदर नाइट्रोजन है, तो क्यों नहीं इन सबको जोड़कर एक इंसान बना लेते, क्यों नहीं बनाते? आज टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की कोशिशें हैं, लेकिन अगर पहला ही मरहला ना हो तो सारा बाकी मामला ख़राब है। ये जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, कि बच्चे पैदा नहीं होते, सिर्फ वही मरहला जो माँ के पेट के अंदर प्रोसेस होना था वो एक ट्यूब के अंदर होने लगता है, दैट्स इट। पहला काम भी फितरी तौर पे होता है, डिलीवरी का मामला भी फितरी तरीके से होगा। सिर्फ आप एक ख़ास माहौल में बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उसको सब ठीक जा रहा है, वो जा रहा है। क्या इंसानों को पैदा करना रोक सकते हैं या पैदा कर सकते हैं? फिर उसकी हालत, फिर उसकी रंग, फिर उसके नाक, फिर उसकी आंखें, क्या क्या चीज़ है जो इंसान की इस बात की दलील देती है कि अल्लाह का एक शाहकार है। हम में से हर इंसान अल्लाह का एक मास्टरपीस है। इतना खूबसूरत बना दिया, तुम यूं फैले हुए हो। चलो मट्टी है, बेजान है, इंसान जानदार है। मट्टी सुन सकती है, इंसान सुनता है। मट्टी देख सकती है, इंसान देख सकता है। मट्टी में अक़ल और फहम है, इंसान में अक़ल और फहम है। क्या मट्टी के अंदर वो हुसन है जो इंसान के चेहरे पे हुसन है? ऐसे लगता है कि चांद की चांदनी भी इंसान के हुसन के आगे शर्मा जाए। बाज़ इंसान तो इतने खूबसूरत होते हैं, बच्चा मुस्कुराता है ऐसे लगता है जैसे कलियाँ खिलने लगी। क्या किसी गुंचे का तबस्सुम होगा जो एक बच्चे की मुस्कुराहट में, फूलों की ताजगी और बच्चे की स्किन को देखे, कितनी लताफत। ये सारा कुछ कहाँ से आता है? कभी एक पैदा होते बच्चे को देखकर भी लोगों ने सोचा कि वाकई इसको पैदा करने वाला कौन है? एक बच्चे की पैदाइश का तस्करा करके अब उसका जरिया बनने वाले जोड़े का तस्करा। व मिन आयातिहि अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वाजा, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि उसने तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ बनाई। क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने पैदा फरमा दी तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत। इन नफी ज़ालिक लआया, बेशक इसमें निशानी है। किसके लिए? लिकौमी यतफक्करून, उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती है। इंतहाई खूबसूरत आयत है, शोहर बीवी के ताल्लुक को समझने और समझाने में मददगार है कि कैसे एक बच्चे की तख्लीक को पीछे पेश करके साथ ही ऐसे लगता है कि माँ बाप की तरफ इशारा दिलाया। और ये पूरी आयतें पढ़ते हुए मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि देखो तुम दुनिया में कैसे आए, कि तुम्हारे माँ बाप के दिल में मैंने कितनी मोहब्बत पैदा की। दुनिया में शौहर और बीवी के ताल्लुक को समझने और समझाने के लिए बहुत कुछ कहा गया। वेस्ट ने तो बस एक जुमले में बात ख़त्म कर दी कि आई लव यू। लव एट फर्स्ट साइट, लव इज़ लाइफ, इस तरह के जुमले। उन्होंने बात लव से शुरू की, जहाँ लव ख़त्म वहाँ शादी ख़त्म। इस्लाम ने शादी को कायम रखने की तीन बुनियादी चीज़ें इस एक आयत में हमें दी हैं। हम इस आयत को मुख्तसरन देखेंगे। वैसे तो इस एक आयत पे बहुत दफ़ा दर्स हुआ है और ऑनलाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, घर पुरसकून कैसे बनते हैं। कई एंगल से इसको किया गया अल्लाह की तौफीक से। एक दर्स तो पूरा एक अरब औरत का एक बहुत ही प्यारा नसीहत नामा है अपनी बेटी को, जो उसने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को नसीहतें की थी कि बेटी अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने शोहर के लिए खुशी का सबब बनो या कामयाब ज़िंदगी बसर करो तो 10 नसीहतों पे अमल करना। मैंने वो पूरी बुक में से पढ़ के एक एक को एक्सप्लेन किया था, जिसमें उसने अपनी बेटी को कनात का सबक दिया कि तुम उसको बहुत ज़्यादा फरमाइशें ना करना, फिर उसमें उसकी नींद का ख्याल रखना, जब नींद आँखों में भर जाती है तो सारा दिन मिजाज उसका बिगड़ता है। फिर उसने बेटी को कहा कि अपने शौहर की भूख का ख्याल रखना, क्योंकि भूखे पेट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर शौहर के माल और असबाब, उसकी चीज़ों की हिफाजत की बात की, फिर उसके बच्चों की हिफाजत की, फिर अपने आप को आरास्ता करना, खुशबू लगाना। इतनी खूबसूरत तरीके से वो एक बद्दू औरत ने नसीहत की हुई है कि वाकई आज के दौर में भी माएँ उसको अगर अपनी बेटियों को जहेज की बजाय सिर्फ़ एक वही नसीहत नामा दे दें तो बहुत सारे घर टूटने से बच जाते हैं। लेकिन हम यहाँ देखेंगे इस आयत के अंदर से तीन चीज़ों को। पहली बात तो जो हम देख ही रहे हैं इसमें, कि ये शादी होना अल्लाह की एक निशानी है। सच है कि झूठ? किस तरह दो गैर इंसान, बाज़ दफ़ा फ़र्क कितना बढ़ता है, जो अगली आयत से पता चल रहा है कि वमिन आयात ही खल्क समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़ अलसिनातिकुम व अलवानिकुम, कि अल्लाह की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की तख्लीक है, नीज तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का इख्तलाफ। इन नफ़ी ज़ालिकल आयतिल आलमीन, बेशक इसमें निशानियां हैं अहले इल्म के लिए। इसमें अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का फ़र्क पेश किया, इसमें रंगों और ज़ुबानों का फ़र्क भी पेश किया। हकीकत यह है कि शौहर और बीवी, एक लड़के और लड़की को जो एक जगह जोड़ा जाता है, उसमें बाज़वा हकीकत में ज़ुबान भी फ़र्क होती है, रंग भी फ़र्क है, गोरा काले से, काली गोरे से, और बाज़ दफ़ा ज़मीन के टुकड़ों तक का फ़र्क होता है। लेकिन एक छत के नीचे इनका जमा हो जाना और 20, 30, 40, 50, 60 बल्कि ज़िंदगी के आखिर तक एक ही मर्द के साथ ज़िंदगी बसर कर देना या एक ही औरत के साथ निभा करते रहना, ये हकीकत में अल्लाह ताला की निशानी है। इसलिए कि वह मिन आयाति ही, दुनिया का कोई दूसरा कानून इस तरह के मजबूत रिश्ते बना ही नहीं सकता, अल्लाह ताला की देन है। आप एक छत के नीचे सगे बहन भाइयों को नहीं रख सकते। दूर होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, इनसे लेन देन ना करना पड़े तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ इनसे उम्मीदें ना हों तो अच्छे लगते हैं। और जहाँ वो ताल्लुक आ जाए जो शौहर और बीवी का दिन रात होता है, लो और दो, लेन एंड देन, यही होता है ना। ये ताल्लुक तो सगे भाई बहनों में भी अगर आ जाए तो शायद जितनी तलाक़ें होती हैं उतनी भाई बहनों के आपस के भी तलाकनामे हो चुके हों। ये सरासर अल्लाह की रहमत है। आज वेस्ट ने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने इनके घरों को तोड़ के रख दिया। जितना जिस इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा ना, उतना वो अपने घर को बनाने वाला होगा। तो ये बात जहन में रखिएगा कि घर बनाने वाली चीज़ है, तोड़ने वाली नहीं है। घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, घर रोज़ रोज़ टूटते हुए अच्छे भी नहीं लगते। अगर किसी का एक घर बस गया तो वो शुक्र करे अल्लाह का। जिस मर्द को बीवी मिल गई है और उसका गुजारा हो रहा है, अल्लाह का एहसान मांदे। जैसे किसी का अमूमन सुना होगा आपने कि घर बन जाए ना तो कहते हैं अब अपना बन गया, बैठे रहो चुपके से, अब हम नहीं रोज़ रोज़ ये दोबारा मज़दूरों के और कंस्ट्रक्शन के चक्करों में आते। और जिनको शौक़ होगा, पैसा बहुत होगा, वो चाहे एक बनाए चाहे चार बनाए, उनकी मर्ज़ी। लेकिन इंसान की फितरत जिस तरह एक तौहीद को मानती है ना, एक रब को मानती है, इस तरह फितरी तौर पे औरत एक ही मर्द के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती है। और अगर आप देखें तो मर्द की खुशियों का भी इन्हिसार एक ही बीवी पे है। जिस मर्द को शौक़ है दूसरी शादी का, वो कर ले, फौरन पूरा हो जाएगा शौक़ एक महीने के बाद। जब एक घर की बजाय दो का खर्चा, जब एक को खुश रखने की बजाय दो को खुश रखना, जब एक की डिमांड्स के साथ दो की डिमांड, शौक से पूरा करो ये शौक, एक महीने के बाद पता चल जाएगा कि वाकई तौहीद में ही बात है। और जो अल्लाह ने कहा था कि वाइन खिफ तुम, अगर तुम्हें डर हो कि अल्लाह तादिलू कि अदल नहीं करोगे, तो फवाहिदा तो एक ही रखो। अल्लाह के नबी की शादियाँ एक से ज़्यादा हुई, वो हालात का तकाजा था। वरना अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई तकरीबन 25 साल एक ही औरत के साथ बसर किए, और वो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी, 2 दफ़ा शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी। फितरत इस बात का तकाजा करती है कि इंसान एक के साथ रहे। कैसे रहे? अल्लाह ताला ने क्या बॉन्ड्स रखी हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मिसाल है कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये 2 पेंसिलें एक जगह पे रहें, अब एक पेंसिल थोड़ी सी मोटी है, एक पतली है, इन दोनों को एक साथ रखना है, तो ज़रूर कोई बॉन्डिंग कैफियत हो। ये तो नहीं हो सकता कि 2 बिल्कुल एक ही जैसी लेके आऊँ। इन 2 को बांधने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ें आपको इस आयत में दिखेंगी, हम उसको देखेंगे जहाँ तो मैं आपको बताऊँगी। पहला, अल्लाह ताला की इस नेमत में गौर करने का जो नुक्ता है वो क्या है कि खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही हम जिन्स बीवियाँ पैदा की। अब देखिए, लफ्ज़ ज़ौज जो है ना, ये शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर के लिए आता है। स्पाउस के माने में, जैसे इंग्लिश में वो मेल और फीमेल की कैद से आज़ाद होता है, लेकिन यहाँ बीवी और शौहर क्यों कह रहे हैं? अगर गौर करेंगे तो आप देखें, लकुम कुम ज़मीर मुज़क्कर की है, मर्द के लिए। अनफुसिकुम कुम क्या है? मुज़क्कर। तुम मर्दों के लिए अज़वाजन बीवियाँ। आगे देखिए, ली तस्कुनू इलैहा, हा की ज़मीर क्या है? मुअन्नस की। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मर्दों को कहा जा रहा है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी ही हम जिन्स पैदा की। कितना बड़ा एहसान है। आप देखिए कि इंसान ने तो हकीकत में अपने आप को उस हद पे बांधा ही नहीं, रोका ही नहीं जहाँ अल्लाह ने रखा था, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है कि मर्द की शादी औरत से हो रही है। इमेजिन करें, मर्द की शादी बंदरिया से हो, मर्द की शादी कुतिया से हो, मर्द की शादी किसी बकरी से हो, कैसा लगे? आने वाली नस्लों की तरबियत का क्या बने, उनके नसब का क्या बने? अल्लाह ने कहा औरत से ही शादी होगी। ये अलग बात है कि लड़कों का दिमाग इतना माँ बहनें ख़राब कर देती हैं, वो कहती हैं तेरे लिए परी लेके आऊँगी। परियाँ तो हम जिन्स नहीं होती, आप ले आए परी कहाँ से लाएंगे? इंसानों में से होगी। औरत की शादी किसी घोड़े से या गधे से होती भी कैसी लगेगी? कभी हमने आज तक इस नेमत पे गौर किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शौहर मर्द तो है और मेरी बीवी औरत तो है, कोई चुड़ैल तो नहीं है, कोई जिन्नी तो नहीं मुझे मिल गई। खुश रहना हो ना, तो इंसान को अल्लाह ताला की छोटी छोटी नेमतें भी बहुत बड़ी लगती हैं। और जिसको ना शुक्री करनी है ना, तो वो बड़ी बड़ी नेमतों को भी यूं ले जाएगा कि अल्लाह की पनाह। आप सोचें कि हमें चिड़िया कितनी प्यारी लगती हैं, परिंदे कितने प्यारे लगते हैं। इमेजिन करें ज़रा, किसी की शादी हो जाए किसी चिड़िया से, पड़ गई मुसीबत। हालांकि इंसान फिर इतनी गहराई में गया कि मर्द को कुतिया से शादी करता दिखाया गया। मैंने पीछे भी ये कई दफ़ा इन आयात में ये मिसाल शेयर की, आज भी मेरे ईमेल में कहीं ना कहीं वो रखी होगी कि कुतिया है, फीमेल डॉग है, उसको ऑरेंज कलर की साड़ी पहनाई हुई है और मर्द उसके गले में फूलों की माला डाल रहा है और वो उसके हाथ से उसको डलवाई जा रही है। इंडिया का ये वाक्या क्यों कहा कि बस पिछले साल मैंने जाते जाते किसी कुत्ते को पत्थर मारा था, उसके बाद से मुझ पे बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हुई, मुझे समझ आ गई है कि कुत्ता खुदा मुझसे नाराज़ हो गया, उसका कफ़ारा ये कि इस कुतिया से शादी करके उसको राज़ी करूँ। लक़द खलक नल इंसान नफ़ी अक्सनी तकवीम सुम रदत ना हुआ साफिली। अल्लाह तो इंसान को इज़्ज़त देता है, लेकिन इंसान इज़्ज़त लेता नहीं। ठीक है, ये बात पे शुक्र हुआ, आपके दिल की गहराई से शुक्र अदा होना चाहिए कि अगर आप जिनसे मुखालिफ के साथ ब्याही गई जो आप ही के हम मिजाज हैं, हम सोच हैं, फिर अनफुसिकुम में थोड़ी सी बात हम एक इशारतन ये कह सकते हैं कि चले अपने ही कल्चर का मिल गया, आपके शौहर या आपकी बीवियाँ आप ही की ज़ुबान समझती हैं, ये नेमत है अल्लाह की। एक माहौल को समझना, एक कल्चर को समझना यकीनन कम्युनिकेशन पैदा करता है, अजनबियत नहीं आती, उठना बैठना। इस सोच के साथ अगर आप कहते हैं ना कि अपनी बिरादरी, अपने ख़ानदान, अपने मुल्क का मर्द मिले या लड़की मिले, बहुत अच्छी बात है, निभाच है, लेकिन अगर इसको इज्जत और तकरीम का ज़रिया बनाएं तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। सोचें ज़रा कि आपके शौहर अरब होते और आपको अरबी का एक लफ्ज़ नहीं आता, क्या वो कम्युनिकेशन हो सकती थी जो आप अपने इस शौहर से जो आपकी ज़ुबान बोलता? आप देखिए कि वो नेमतें जो मिल जाती हैं उसकी कदर ही नहीं होती। बाज़ लोग सिर्फ बात ज़्यादा ना कर सकने की वजह से क्लोजनेस ही नहीं फील करते। लेकिन एक बात है कि औरत ज़ुबान तो छोड़ें, ना भी बोलती हो ना तो मर्द से लड़ लेती है। एक ब्रदर थे, हम कहीं जहाँ रहते थे तो उनकी बीवी जो थी वो ज़ुबान से बोल नहीं सकती थी, अपनी ज़ुबान में आप कह लें गूंगी थी। तो मर्द जो भी थे उनकी, जब उनसे शादी हुई तो वो ये बात कहा करते थे कि आप कहते हैं कि ये गूंगी है, मैं नहीं कहता ये गूंगी है, क्योंकि जब इसने लड़ना होता है ये पूरे जिस्म के एक्शन से लड़ती है मेरे साथ। ये सच है, औरत फिर भी बोल लेती है और मर्द भी ऐसे ही होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी अपने शौहर की बात बुरी लगे ना, चीख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ करें, तो कहा करें शुक्र है अल्लाह का कि मैं इनकी ज़ुबान समझ तो रही हूँ। अगर ये आप तो चीख रहे हैं, अगर ये वाकई दहाड़ ही रहे होते शेर की तरह, ये शेर ही होते तो क्या बनता, तो आप देखेंगे कि आपको नेमतों की कदर आएगी। अगला नुक्ता जो इस आयत का, जिसको मैं पहला नुक्ता कहूँगी घर को जोड़ने की रोशनी में, वो है लितस्कुनू इलैहा। यहाँ गौर कीजिएगा, मैं खुद औरत हूँ और औरतों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि घर को खुशगवार बनाने में अल्लाह ताला ने मर्द को क्या कहा कि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। क्या पता चला, एक तो मर्दों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तुम्हें ये सुकून कहीं बाहर से नहीं ढूंढना, तुम्हें अपने जज्बात को पुरसकून करना है तो इसी बीवी से हासिल करो वो जिस्मानी कुर्ब, अगर तुम्हें पेट को भरना है, खाना अच्छा खाना है तो इसी बीवी के हाथ का खाओ, अगर तुमने अपनी आंखें ठंडी करनी है तो इस बीवी के हुस्न से फ़ायदा उठाओ, अगर तुम चाहते हो कि कोई घूमो फिरो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करो तो इसके साथ चलो, ना कि तुमने बीवी को घर में मशीन बना के और नौकरानी बना के रखा और तुम सारा कुछ बाहर दूसरी अपनी मिस्ट्रेसेस से हासिल करो। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इधर औरतों के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि घर के सुकून में मर्द से ज़्यादा औरत का दखल होता है। और मैं औरत होने के बावजूद अल्लाह ताला की इस बात पे 100% यकीन रखती हूँ, मर्दों की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरतों के मिजाज में जो चीज़ फितरत में गूंदी थी ना, वो ये थी कि ये सुकून देना चाहती है। आप ज़रा अपने आपको पीछे लेके जाएं, एक छोटी सी बच्ची जब उसको थोड़ा सा शऊर आता है, आप अपने बचपन भी चली जाए, वो बच्ची जिस तरह अपने बाप के आने पे खुश होती, उसके जूते रखती, उसके लिए रोटियां पकाती खाती रखती, बेटे वैसे नहीं करते। ये छोटी छोटी बच्चियां जो अपने गोद में छोटे छोटे गुड़िया और गुड्डे खेलती, उनको फीड करवाती, दूध पिलाती, फीडर पिलाती दिखाई जाती हैं, मर्द ऐसे नहीं होते। औरत अपने खमीर के एतबार से हमेशा केयरिंग होती है। ये अलग बात है कि आज हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी। मैं सोच रही थी जब इसकी तैयारी कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आज क्या हो गया। पहले तो मैं कहती थी कि हर एक में से दूसरा घर जो बनता है वो अपसेट है, अब तो मुझे अपनी बात और ही बदलती हुई दिखती है कि हर एक ही घर बिगड़ा हुआ दिखता है। कौन करे, किधर करे, शौहर झुके, बीवी झुके, मर्द कॉम्प्रोमाइज करे, उसका कसूर है, माँ का कसूर है, सास का कसूर है, ये एक अलग बात है। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो घरों की आज बेसकूनी की है ना, वो बच्चियों की तरबियत का अंदाज़ है। हमने बच्ची के हाथ से गुड़िया उठा के जब से उसको गाड़ी पकड़ा दी, कंप्यूटर पकड़ा दिए, उसको सेलफोन पकड़ा दिए, वो भी साइकिलें चलाती फिरे, वो भी वो काम करे जो लड़के करते हैं, तो उस आने वाली खूबसूरत बीवी का मिजाज बचपन में बिगड़ गया। पहले दौर में आप देखिए बच्चियाँ गुड़ियों से ही खेलती थी, फिर गुड़िया गुड्डे की शादी करती थी, फिर माँ से कह सुन के कोई चावल पकवा लेती थी, फिर दावत करती थी, फिर उसके पटोले सीती थी, कटोले सीती थी और पता नहीं क्या क्या बनाती थी, हम भी जहेज देते हैं, वो भी बेचारी गुड़िया का जहेज जमा करती थी, फिर रात को थक जाती थी तो वो गुड़िया गुड्डे सारा खेल ख़त्म, चलो भाई कल खेलेंगे, जाओ तुम सहेलियों अपने घर चली जाओ, सो जाती थी। क्या ख्याल है ये बेकार खेल होता था? नहीं, ये उसके अंदर के जज्बात को तस्कीन देता था। अगले दिन फिर वो सुबह कहती थी अम्मी मेरी गुड़िया किधर है। अब आप बच्चियों को गुड़िया से खेलता कम ही देखेंगे। लड़कियां खेलती थी माओं के दुपट्टों से खेलती थी, पहले माएँ भी दुपट्टे लेती थी, बच्चियां उसी दुपट्टे का वो एक बुरका सा बनाती। आज भी मेरे जहन में, शायद मैं कोशिश करूं तो मैं दोबारा बना सकती हूं, जो मैंने देखा हुआ लोगों को दुपट्टे को दोहरा करके फिर करके निकाब बनाती थी बल्कि लड़कियां, और वो पहन पहन के खेलती थी, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम मेरे घर आ रही हो। अब ना माओ के निकाब, दुपट्टे, हिजाब रे, हमने बचपन से ही लड़कियों को लड़का बना दिया। माने आज अगर हम समझते हैं ना कि हमारी बच्ची परेशान है, या हमारी बेटी, या हम खुद भी उस एज में हो सकते हैं, सुनने वाले मुख्तलिफ तर्ज के लोग होते हैं, इसलिए ये सारे जुमले अब हर एक अपने हिसाब से फिट कर ले। अगर आज मैं परेशान हूं ना अपने घर में, तो इसकी वजह क्या है कि शायद माजी में ही मेरी तरबियत गलत हुई। आज कॉन्फिडेंट के नाम पे, भाग दौड़ के नाम पे, लड़की और लड़के की तरबियत में कम ही फर्क रहा। लड़कियों की तरबियत में जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो हमें नहीं दिखती, और जो लड़कों की होनी चाहिए वो उनमें नहीं दिखती। नतीजा क्या हुआ कि औरत ये मानने को तैयार ही नहीं, के लिए तस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने मेरे पास सुकून का खजाना रखा हुआ है। वो कहती है ये क्यों नहीं मुझे देता, मैं सुकून क्यों दूँ, ये मुझे दे, मैं इसकी केयर करूँ, ये मेरी क्यों नहीं करता, मैं क्यों इसके लिए ज़्यादा सजूँ संवरूँ, ये मेरे लिए क्यों नहीं सजता। तो याद रखिएगा कि हकूक मांगने की चीज़ नहीं है, देने की चीज़ है। जो मांगता है उसको नहीं मिलता, जो देता है, फितरत का असूल है, उसी को पलट के मिलता है। अगर माँ बाप बच्चियों की तरबियत में ये बात शुरू से रख देना, मैं नहीं समझती कि इतनी तलाकें हों। मैं मानती हूँ कि लड़कों की तरबियत भी बहुत ख़राब है, हमने शैतान के हाथों में आके बहुत बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ अपने पाँव पे मारी। एक तरफ हमने लड़की को लड़का बना के पाल दिया, उसको इस तरीके से हमने बना के पेश किया कि वो भी दुनिया की दौड़ में काम करेगी, वो चांद पे भी जाएगी और वो मशीनें भी बड़ी बड़ी चलाएगी। दूसरी तरफ हमने लड़कों की तरबियत में भी बहुत ही कमी की, ना उनको जिम्मेदार शहरी बनाया। 12-14 साल तक का लड़का तो गले में गिटार डाल के तो वो नाचता कूदता फिर रहा है, ना उसके जिम्मेदारियाँ। बहन काम कर रही है, बहन जाके बाहर से कोई चीज़ ले आती है, लड़का नहीं लाता। बहन भी आधी रात को बाहर जाए, लड़के को कोई बुरा नहीं लगता। ये हमने खुद आने वाली लड़की के ऊपर जुल्म किया। माँ कहती है तुम बैठो, मैं खुद ही ग्रोसरी ले आऊँगी। आप में से कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे शऊर की उम्र के आगे हैं, मसलन 14-12, जिसको थोड़ी बहुत समझ है कि वो घर की ग्रोसरी लाए। मैंने तो देखा है कि अब औरतें ग्रोसरी लाती हैं। आप कहती हैं लो इनको देंगे, पैसे ज़ाया कराएंगे। आप कहते हैं कि पहले दौर में फितरी तौर, तो मैं नहीं कहती पहला दौर कोई आइडियल दौर था, लेकिन कुछ ना कुछ रिवायात बहरहाल इस्लाम से मेल खाती थी। बाप शॉपिंग करने जाते थे, 7 बच्चे जाते थे उनके। 5-6 साल का बच्चा चल पड़ता है, वो देख रहा है बाप ढूंढ ढूंढ के आलू निकाल रहा है, टमाटर देख देख के ला रहा है, ये अच्छे टमाटर हैं, ये ख़राब हैं। वो खुद ब खुद फितरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग हो रही होती थी। इसी तरह लड़कियां घर में माँ को काम करता देखती थी, साथ ही किचन में घुस गई, वो भी आटे से खेल रही हैं, वो भी कहती हैं लाओ मैं रोटी पकाती हूँ, वो उसको एक आलू दे दें, जाओ तुम अपने चूल्हे पे पकाओ, मैं अपने पकाती हूँ। वो लड़की बिल्कुल 12-14 साल में घर संभालने के तैयार हो चुकी होती थी। लड़कों का भी यही हाल है। आज हम 12-14 छोड़िए, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तो सोचते ही नहीं है कि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी लगाएं। आप इस बात की तस्दीक करें या तकजीब करें, नो प्रॉब्लम, हर एक के हालात फ़र्क हो भी सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व की है, ना आज लड़कियों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, ना लड़कों के ऊपर बाहर की डाली जाती हैं। यकीन करें, मैं सोचती हूँ कि लड़की 12 साल की हो जाए ना, तो माँ के हाथ से चूल्हा चौंका ख़त्म, अब वो माँ आराम करे। ये हमें क्यों भाग भाग के घर जाना पड़ता है हांडी पकानी है, और बाज़ वो नहीं बच्चों के लिए डर के जा रहे होते हैं पकाने, जिनको अब हमारे लिए पकानी चाहिए, और बाहर ग्रोसरी लेने जाना है क्योंकि बच्चा ज़िद करके बैठा हुआ है, मेरे लिए वो नहीं लाए। हालांकि उन्हें बच्चों को लानी चाहिए थे हमारे लिए। यकीन करें, हम माँ बाप अगर शऊर से जिए ना, तो हमारे बच्चे हो जाएं बस ज़रा से वज़न उठाने के काबिल, हमारे तो दिन खूबसूरत हो गए। आराम से बैठें, अपने काम करें और काम कराएं इनसे। फितरत का असूल हम तोड़ते हैं, और सिर्फ एक बड़ा बुत हमारे सामने होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तालीम, तालीम क्या करना है इस तालीम को, जिस तालीम ने उन बच्चों को अपना घर बनाने के काबिल ना किया। पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जॉब, फिर जॉब के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद ये घर टूट जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह के इस वादे को मानिए कि औरत कोशिश करे कि मैंने सुकून देना है, और मर्द कोशिश करे कि मैंने सुकून लेना है, इससे फिर घर जुड़ते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता।